एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
नमस्कार। आज हम एक ऐसे शब्द पर बात करने वाले हैं जो सुनते ही मन में अक्सर एक डर सा पैदा कर देता है, कैंसर।
हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सही जानकारी कम और शायद गलत फहमियाँ थोड़ी ज्यादा फैली हुई है।
सही कहा, और इसीलिए आज हम कोशिश करेंगे कि प्रोफेसर निकोलस जेम्स के काम से, खासकर उनकी किताबों से जो समझ मिलती है, उसके आधार पर इस विषय की तह तक जाएं।
हाँ, प्रोफेसर जेम्स कैंसर के जाने माने डॉक्टर भी हैं और रिसर्चर भी। उनका काम हमें इस काफी मुश्किल बीमारी को आसान भाषा में समझने में मदद करता है।
बिल्कुल, क्योंकि आजकल देखिए जानकारी तो बहुत है, पर कौन सी सही है कौन सी नहीं, ये समझना ही अपने आप में एक चुनौती है।
सही बात है।
हमारा मकसद बस यही है कि डर की जगह ज्ञान ले सकें और हम कैंसर को एक वैज्ञानिक नजरिए से देख पाएं।
और जो नई तरक्की हो रही है विज्ञान में, उसने तो कैंसर की समझ और इलाज को काफी बदल दिया है। ये जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।
हाँ, तो प्रोफेसर निकोलस जेम्स की ही बात करें, उनकी खासियत क्या है?
देखिए, उनकी खास बात यह है कि वो सिर्फ लैब में बैठकर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक नहीं हैं।
अच्छा।
और ना ही वो सिर्फ क्लिनिक में मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर हैं, वो दोनों काम करते हैं। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं और अस्पताल में सलाहकार डॉक्टर भी।
ओह, तो मतलब दोहरा अनुभव है उनको।
हाँ बिल्कुल, और इसी वजह से वो विज्ञान की जो बारीकियां हैं और मरीजों की जो असलियत है, जमीनी हकीकत, उन दोनों को बहुत अच्छे से समझते हैं।
तो वो एक पुल की तरह काम करते हैं ना, मुश्किल वैज्ञानिक बातों और आम इंसान के बीच।
बिल्कुल सही, उनका नजरिया इसीलिए बहुत प्रैक्टिकल है, जमीनी है। और उनका खास काम रहा है यूरोलॉजिकल कैंसर पर, जैसे प्रोस्टेट कैंसर, ब्लैडर कैंसर।
अच्छा।
उन्होंने कई बड़े क्लिनिकल ट्रायल भी लीड किए हैं जिनसे इलाज के तरीके बेहतर हुए हैं, तो उनमें वो वैज्ञानिक शक्ति भी है और मरीजों के लिए हमदर्दी भी। इसीलिए वो इस मुश्किल विषय को आम लोगों के लिए इतने अच्छे से समझा पाते हैं। वो ये भी बताते हैं कि विज्ञान क्यों कह रहा है और इलाज कैसे काम कर रहा है।
तो उनकी जो किताबें हैं, जैसे कैंसर अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, उनका मकसद यही है?
हाँ, उनका मकसद यही है कि कोई भी मरीज हो, उनके परिवार वाले हों, छात्र हों, या कोई भी आम इंसान जो जानना चाहता है, वो कैंसर की बुनियादी बातें समझ सके।
और सबसे बड़ी बात जो वो कहते हैं, वो शायद यही है कि कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है।
बिल्कुल, ये बीमारियों का एक बहुत बड़ा समूह है और इसकी जड़ कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने शरीर की जो कोशिकाएं हैं उन्हीं की मशीनरी में आई गड़बड़ी है।
अच्छा, मतलब हमारी अपनी ही कोशिकाएं।
हाँ, किताब का जो मूल तर्क है वो यही है कि कैंसर तब होता है जब हमारी अपनी सामान्य सेहतमंद कोशिकाएं जो हैं वो नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। कोशिकाओं के बनने, बढ़ने और मरने की एक सामान्य प्रक्रिया होती है ना? वो जब बिगड़ जाती है तब कैंसर की शुरुआत होती है।
तो ये किताब हमें कोशिका के अंदर की दुनिया से लेकर पूरी दुनिया में कैंसर के असर तक ले जाती है।
हाँ, एक पूरी यात्रा है, और ये कैंसर को किसी बाहरी दुश्मन की तरह नहीं देखती। ये नहीं कहती कि कोई बाहर से हमला हुआ है,
बल्कि
ये कहती है कि ये हमारे शरीर की जो जीवन देने वाली प्रक्रियाएं हैं उन्हीं का एक बिगड़ा हुआ रूप है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये अंदर से शुरू होता है।
हाँ, ये नजरिया ही बदल देता है पूरी तरह से।
और सबसे अहम बात यह है कि जब हमने इसकी जड़ को समझना शुरू किया, मतलब जेनेटिक्स के लेवल पर, कोशिकाओं के लेवल पर, तब हम पुराने, अक्सर बेअसर और तकलीफदेह इलाजों से आगे बढ़े।
हाँ, उन पुराने इलाजों से।
और आज हम कहाँ पहुंचे? सटीक, व्यक्तिगत और ज्यादा उम्मीद जगाने वाले इलाजों तक। ये सब समझ की वजह से हुआ है।
तो चलिए इससे थोड़ा और खोलते हैं, सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। आखिर ये कैंसर है क्या? हमारे शरीर की जो सामान्य कोशिकाएं हैं वो तो एक कायदे से चलती हैं।
हाँ बिल्कुल, एक सेल साइकिल होता है। वो बढ़ती हैं, अपना डीएनए कॉपी करती हैं, फिर बढ़ जाती हैं। ताकि शरीर बढ़े, मरम्मत हो, पुरानी कोशिकाएं हटें, नई आएं।
और इसमें वो मरने वाली प्रक्रिया भी होती है ना?
हाँ, बहुत जरूरी, एपोप्टोसिस, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, मतलब कोशिकाओं का अपना एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम होता है।
अच्छा, जैसे एक्सपायरी डेट।
हाँ बिल्कुल, पुरानी या खराब हो चुकी कोशिकाएं खुद ही खत्म हो जाती हैं, एक तरह का क्वालिटी कंट्रोल।
तो कैंसर कब होता है? जब ये कंट्रोल फेल होता है।
एग्जैक्टली, जब ये कंट्रोल सिस्टम फेल हो जाता है, ये उन कोशिकाओं से शुरू होता है जिनके डीएनए में कुछ बदलाव आ जाते हैं, म्यूटेशन।
म्यूटेशन?
हाँ, इन बदलावों की वजह से वो कोशिकाएं कायदे कानून मानना बंद कर देती हैं।
और इसमें वो जीन्स का भी रोल होता है ना?
हाँ, दो तरह के जीन यहाँ बहुत अहम है। एक होते हैं ऑन्कोजीन।
अंकुजीन?
हाँ, ये समझिए कि ये सामान्य जीन के बिगड़े हुए रूप हैं। ये कोशिका को लगातार सिग्नल देते रहते हैं, बढ़ो बढ़ते रहो बढ़ो बढ़ते रहो, जैसे गाड़ी का एक्सीलेटर फंस गया हो।
ओह।
और दूसरे होते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन, ये ब्रेक की तरह काम करते हैं।
अच्छा, रोकने वाले।
हाँ, जैसे मशहूर P53 या BRCA जीन। जब ये जीन खराब हो जाते हैं या काम करना बंद कर देते हैं तो कोशिका अपनी बढ़ने की रफ्तार रोकने या जरूरत पड़ने पर खुद को खत्म करने अपोप्टोसिस की क्षमता खो देती है।
तो मतलब एक्सीलेटर फंसा हुआ है और ब्रेक भी फेल हो गए।
बिल्कुल सही। इसीलिए कैंसर कोई बाहरी हमला नहीं है, ये अंदर की बगावत है। यहीं पर हमें ये भी समझना होगा कि सारे ट्यूमर कैंसर नहीं होते। सौम्य यानी बिनाइन और घातक यानी मैलिग्नेंट ट्यूमर में फर्क होता है।
हाँ, ये जरूरी है। बिनाइन वाले फैलते नहीं है।
नहीं, वो बढ़ तो सकते हैं पर अपनी जगह पर रहते हैं, जबकि मैलिग्नेंट कैंसर वाले ट्यूमर शरीर में कहीं भी फैल सकते हैं। वही असली खतरा है।
ठीक है, अब सवाल ये कि ये DNA में बदलाव, ये म्यूटेशन होते क्यों हैं? क्या कोई एक वजह है?
नहीं, प्रोफेसर जेम्स यही कहते हैं कि इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं होता, अक्सर कई वजहें मिलकर काम करती हैं।
अच्छा, कई वजह हैं।
हाँ, इसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहली वजह है सिर्फ संयोग, चांस।
चांस कैसे?
देखिए, जब भी कोशिका बढ़ती है उसे अरबों DNA अक्षरों को कॉपी करना होता है ना?
हाँ।
अब इतनी बड़ी कॉपी में गलती हो सकती है। बस ये किस्मत की बात है कि कभी कोई बहुत जरूरी जीन में ऐसी गलती हो जाए जो खतरनाक साबित हो। इसीलिए बढ़ती उम्र कैंसर का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। जितनी ज्यादा उम्र, उतनी बार कोशिकाएं बढ़ चुकी होती हैं और गलती की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है।
अच्छा, तो उम्र एक बड़ा फैक्टर है, और दूसरी वजह?
दूसरी वजह है हमारी जीवन शैली और हमारा वातावरण, यानी कार्सिनोजेन, वो चीजें जो कैंसर पैदा कर सकती हैं।
जैसे
तंबाकू का धुआं, ये तो सबसे बड़ा है। शराब, सूरज की तेज UV किरणें, कुछ इन्फेक्शंस भी, जैसे HPV वायरस जिससे सर्वाइकल कैंसर होता है, या Hepatitis B और C जिनसे लिवर कैंसर हो सकता है।
और खान पान, मोटापा, कसरत ना करना।
हाँ, वो भी इसमें शामिल हैं। ये वो चीजें हैं जिन पर हमारा कुछ हद तक कंट्रोल हो सकता है, हम अपनी आदतें बदल सकते हैं।
और तीसरी वजह?
तीसरी वजह है खानदानी, वंशानुगत, जेनेटिक्स। कैंसर का एक छोटा हिस्सा ऐसा होता है जो परिवारों में चलता है।
अच्छा।
क्योंकि उनमें कुछ खास जीन्स में जन्म से ही गड़बड़ी होती है, जैसे वो BRCA1 और BRCA2 जीन।
हाँ, सुना है इनके बारे में, स्तन कैंसर से जुड़े हैं।
हाँ, स्तन और अंडाशय ओवेरियन कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं। ऐसे लोगों में कैंसर होने का रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि उनका एक ब्रेक सिस्टम, समझिए, पहले से ही कमजोर होता है।
लेकिन आपने कहा कि ये कई चरणों में होता है, एक म्यूटेशन काफी नहीं?
हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। कैंसर लगभग हमेशा एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। आमतौर पर एक अकेली म्यूटेशन से कैंसर नहीं होता, समय के साथ धीरे धीरे कई सारी जेनेटिक गड़बड़ियां जमा होती हैं, तब जाकर कोशिका पूरी तरह बागी होती है और कैंसर बनता है।
और कैंसर की सबसे खतरनाक बात तो उसका फैलना है, मेटास्टेसिस।
हाँ बिल्कुल, मेटास्टेसिस। ये कैसे होता है? पहले तो जो शुरुआती ट्यूमर है वो बढ़ता है और अपने आसपास के टिश्यू में घुसपैठ करने लगता है।
अच्छा।
लोकल लेवल पर।
हाँ।
फिर कुछ कैंसर कोशिकाएं ज्यादा शातिर हो जाती हैं, वो पास की खून की नसों या लिम्फ की नसों में घुस जाती हैं।
खून की नसों में?
हाँ, और फिर खून या लिम्फ के बहाव के साथ वो पूरे शरीर में सफर करती हैं।
लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम उन्हें पकड़ता नहीं।
यही तो उनकी चालाकी है, वो अक्सर इम्यून सिस्टम यानी हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली से बचने के तरीके निकाल लेती हैं।
हो।
और आखिर में ये कोशिकाएं किसी दूर के अंग में, जैसे लिवर, फेफड़े, दिमाग या हड्डियां, वहां जाकर रुकती हैं, नस से बाहर निकलती हैं और वहां एक नया दूसरा ट्यूमर बनाना शुरू कर देती हैं।
बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक है।
बिल्कुल, इसीलिए मेटास्टेसिस कैंसर से होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण है। एक जगह पर अगर ट्यूमर सीमित है तो उसे अक्सर ऑपरेशन से निकाल सकते हैं।
हाँ।
पर जब कैंसर की लाखों छोटी छोटी जमावटें पूरे शरीर में फैल जाएं तो उन्हें काटना नामुमकिन हो जाता है। तब हमें सिस्टेमिक इलाज चाहिए जो पूरे शरीर पर काम करे।
और ये ट्यूमर अपनी खुराक का इंतजाम भी करते हैं, वो खून की सप्लाई वाला कुछ?
हाँ, एंजियोजेनेसिस। ट्यूमर अपनी नई खून की नसें बनवाते हैं ताकि उन्हें ऑक्सीजन और पोषण मिलता रहे और वो बढ़ते रहें, फैलते रहें।
तो जब शक होता है कि कैंसर है तब क्या होता है, डायग्नोसिस कैसे होता है?
देखिए, सबसे पहले तो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, जैसे मैमोग्राम स्तन कैंसर के लिए या कोलोनोस्कोपी आंत के कैंसर के लिए। इनका मकसद है स्वस्थ लोगों में कैंसर का जल्दी पता लगाना,
जब वो शुरुआती स्टेज में हो।
हाँ, जब इलाज सबसे आसान और कामयाब होता है। लेकिन अगर लक्षण हैं या स्क्रीनिंग में कुछ शक वाली बात दिखती है तो पक्के डायग्नोसिस के लिए लगभग हमेशा बायोप्सी की जरूरत पड़ती है।
बायोप्सी यानी टिश्यू का सैंपल लेना।
हाँ, शक वाली जगह से टिश्यू का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला जाता है और उसे माइक्रोस्कोप के नीचे जांचा जाता है।
इससे कन्फर्म हो जाता है।
हाँ, इससे न सिर्फ ये कन्फर्म होता है कि कैंसर है या नहीं, बल्कि ये भी पता चलता है कि ये किस तरह का कैंसर है। ये जानकारी इलाज चुनने के लिए बेहद जरूरी है।
ठीक है, बायोप्सी हो गई, पता चल गया कैंसर है, उसके बाद
होती है स्टेजिंग। ये पता लगाना कि ट्यूमर कितना बड़ा है और शरीर में कहां कहां तक फैला है।
स्टेजिंग, ओके।
इसके लिए डॉक्टर एक स्टैंडर्ड सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, TNM सिस्टम। टी मतलब ट्यूमर का साइज, एन मतलब क्या पास के लिम्फ नोड्स में फैला है, और एम मतलब क्या दूर के अंगों में मेटास्टेसिस हुआ है।
अच्छा, TNM। और इसमें मदद के लिए स्कैन वगैरह होते होंगे?
बिल्कुल, CT स्कैन, MRI, PET स्कैन, ये सब इमेजिंग तकनीकें स्टेजिंग में मदद करती हैं। सही स्टेज पता चलने से ही इलाज का लक्ष्य तय होता है।
लक्ष्य मतलब?
मतलब ये कि क्या हम पूरी तरह ठीक करने, क्योर की कोशिश कर रहे हैं, या अगर कैंसर फैल चुका है तो उसे कंट्रोल करके लक्षणों को कम करने और जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने, पेलिएशन की। लक्ष्य जानना बहुत जरूरी है।
बिल्कुल, तो अब आते हैं इलाज पर। पारंपरिक तरीके क्या रहे हैं?
पारंपरिक रूप से तीन मुख्य स्तंभ रहे हैं। पहला है सर्जरी यानी ऑपरेशन।
हाँ, ऑपरेशन।
अगर कैंसर एक ही जगह पर सीमित है, लोकलाइज्ड है, तो ये सबसे पुराना और अक्सर सबसे कारगर तरीका है। सीधी सी बात है, ट्यूमर को काटकर निकाल देना।
आजकल तो इसमें भी नई तकनीकें आ गई हैं।
हाँ बिल्कुल, अब लैप्रोस्कोपिक यानी छोटे चीरे वाली सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी होती है जिनसे रिकवरी तेज होती है।
ठीक है, दूसरा तरीका?
दूसरा है रेडियोथेरेपी, जिसे आम भाषा में सिकाई कहते हैं। इसमें हाई एनर्जी रेडिएशन यानी किरणों का इस्तेमाल करके कैंसर कोशिकाओं को मारा जाता है।
ये भी लोकल इलाज है?
हाँ, ये भी एक लोकल इलाज है। रेडिएशन को बहुत सटीक तरीके से सिर्फ ट्यूमर वाली जगह पर फोकस किया जाता है, ताकि आसपास की सेहतमंद कोशिकाओं को कम से कम नुकसान हो।
और तीसरा स्तंभ है कीमोथेरेपी।
हाँ, कीमोथेरेपी ये एक सिस्टमिक इलाज है।
सिस्टमिक मतलब?
मतलब इसकी दवाएं खून के जरिए पूरे शरीर में घूमती हैं, इसलिए ये फैले हुए कैंसर के लिए भी काम कर सकती है।
ये काम कैसे करती है?
कीमो दवाएं उन कोशिकाओं को मारती हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रही हों। अब क्योंकि कैंसर कोशिकाएं बहुत तेजी से बढ़ती और बढ़ती हैं, वो इसका निशाना बनती हैं।
लेकिन यही दिक्कत भी है शायद, साइड इफेक्ट्स।
बिल्कुल, यही इसकी कमजोरी भी है। हमारे शरीर में कुछ और सेहतमंद कोशिकाएं भी हैं जो तेजी से बढ़ती हैं।
जैसे
बालों की जड़ें, बोन मैरो जहां खून बनता है, हमारे पेट और आंतों की अंदरूनी परत, कीमो इन पर भी असर करती है।
इसीलिए बाल झड़ते हैं, उल्टी आती है, खून की कमी हो जाती है।
हाँ, ये सब साइड इफेक्ट्स इसीलिए होते हैं। फिर भी कीमो पहली दवा थी जो मेटास्टेटिक यानी फैले हुए कैंसर का असरदार ढंग से इलाज कर सकती थी। इसने बहुत जानें बचाई हैं।
हाँ, ये तो है, पर अब तो इलाज के नए दौर की बात होती है।
बिल्कुल, अब हम इलाज के एक नए युग में हैं। कीमोथेरेपी को अगर हम एक भारी हथौड़ा कहें,
हाँ,
तो टारगेटेड थेरेपी एक तरह की स्मार्ट मिसाइल है।
स्मार्ट मिसाइल? अच्छा।
हाँ, ये ऐसी दवाएं हैं जिन्हें खास तौर पर कैंसर कोशिकाओं में पाई जाने वाली किसी खास मॉलिक्यूलर कमजोरी पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है।
मतलब ये सिर्फ कैंसर सेल को पहचानती हैं?
काफी हद तक। उदाहरण के लिए ग्लीवेक नाम की दवा है, इसने क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया CML के इलाज में क्रांति ला दी। ये सीधे उस एक खास प्रोटीन पर हमला करती है जो CML कोशिकाओं को बढ़ने के लिए जरूरी है।
तो इसके साइड इफेक्ट्स कम होते होंगे?
हाँ, अक्सर ये कीमो से कम जहरीली होती हैं, क्योंकि ये सेहतमंद कोशिकाओं को काफी हद तक बख्श देती हैं।
और फिर एक और बड़ा नाम आता है, इम्यूनोथेरेपी।
इम्यूनोथेरेपी, हाँ, ये शायद पिछले कुछ दशकों की सबसे बड़ी सफलता है कैंसर के इलाज में।
इसका आइडिया क्या है?
इसका आइडिया बहुत ही अनोखा और शक्तिशाली है। ये कैंसर से लड़ने के लिए मरीज के अपने इम्यून सिस्टम यानी शरीर की रक्षा प्रणाली को ही इस्तेमाल करती है।
अपने ही इम्यून सिस्टम को? पर वो तो पहले से ही लड़ रहा होगा ना?
लड़ने की कोशिश करता है, पर होता ही है कि कैंसर कोशिकाएं अक्सर बहुत चालाक होती हैं। वो इम्यून सिस्टम से छिपने या उसे बंद करने के तरीके विकसित कर लेती हैं।
ओ, तो इम्यूनोथेरेपी क्या करती है?
इम्यूनोथेरेपी इम्यून सिस्टम पर लगे इन ब्रेक्स को हटा देती है, जैसे चेकपॉइंट इनहिबिटर नाम की दवाएं हैं।
चेकपॉइंट इनहिबिटर?
हाँ, ये इम्यून कोशिकाओं जिन्हें टी सेल्स कहते हैं, उन पर कुछ ऑफ स्विच जैसे होते हैं, जैसे PD-1। ये दवाएं इन ऑफ स्विच को ब्लॉक कर देती हैं।
तो उससे क्या होता है?
उससे टी सेल्स फिर से एक्टिव हो जाते हैं, आजाद होकर कैंसर कोशिकाओं को पहचानते हैं और उन पर हमला कर पाते हैं।
अरे वाह।
इसमें मेलानोमा यानी स्किन कैंसर और फेफड़ों के कैंसर जैसे कई मुश्किल कैंसरों में भी जबरदस्त नाटकीय सुधार दिखाए हैं।
और कुछ हार्मोन थेरेपी भी होती है?
हाँ, कुछ कैंसर जैसे ज्यादातर स्तन कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर बढ़ने के लिए हार्मोन्स पर निर्भर करते हैं। हार्मोन थेरेपी या तो इन हार्मोन्स का बनना रोकती है या उन्हें कैंसर कोशिकाओं से जुड़ने से रोकती है, एक तरह से उनकी खुराक बंद कर देती है।
तो भविष्य की बात करें, प्रोफेसर जेम्स किन चीजों पर जोर देते हैं?
भविष्य के लिए वो दो मुख्य स्तंभों पर जोर देते हैं। पहला है रोकथाम यानी प्रिवेंशन।
रोकथाम?
हाँ, मतलब ऐसी सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियां बनाना जिनसे कैंसर का खतरा कम हो, जैसे तंबाकू पर रोक, HPV टीकाकरण, और साथ ही हम व्यक्तिगत स्तर पर जो जीवन शैली अपनाते हैं, सही खान पान, वजन कंट्रोल, कसरत, धूप से बचाव,
और जल्दी पता लगाना भी इसी में आएगा।
बिल्कुल, जल्दी पता लगाना यानी अर्ली डिटेक्शन भी रोकथाम का ही एक जरूरी हिस्सा है।
और दूसरा स्तंभ?
दूसरा स्तंभ है व्यक्तिगत इलाज यानी पर्सनलाइजेशन, या जिसे प्रिसिजन मेडिसिन भी कहते हैं।
प्रिसिजन मेडिसिन मतलब?
इसका मतलब है कि भविष्य में डॉक्टर सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि अच्छा फेफड़ों का कैंसर है या स्तन कैंसर है।
तो क्या देखेंगे?
वो हर मरीज के ट्यूमर का खास जेनेटिक मेकअप देखेंगे, मतलब उस ट्यूमर की पूरी जेनेटिक कुंडली बनाई जाएगी।
अच्छा।
और फिर उसी कुंडली के हिसाब से सबसे सही टारगेटेड दवा या इम्यूनोथेरेपी या उनका कॉम्बिनेशन चुना जाएगा। इलाज हर मरीज के लिए अलग होगा उसके ट्यूमर के हिसाब से।
ये तो बिल्कुल ही अलग तरीका हो गया।
हाँ, और इसमें नई तकनीकें जैसे लिक्विड बायोप्सी भी मदद करेंगी।
लिक्विड बायोप्सी, ये क्या है?
ये एक साधारण ब्लड टेस्ट है। इससे खून में तैर रहे कैंसर DNA के छोटे छोटे टुकड़ों का पता लगाया जा सकता है।
ब्लड टेस्ट से? कमाल है।
हाँ, इससे शायद भविष्य में कैंसर का बहुत जल्दी पता लगाना संभव हो सकेगा, और इलाज कितना काम कर रहा है इस पर भी नजर रखना आसान हो जाएगा बिना बार बार टिश्यू बायोप्सी किए।
तो अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या कैंसर पूरी तरह खत्म हो जाएगा?
शायद पूरी तरह खत्म ना हो पाए, पर लक्ष्य ये है कि कैंसर कई लोगों के लिए एक ऐसी मैनेज की जा सकने वाली क्रॉनिक बीमारी बन जाए जिसके साथ लोग एक लंबा और भरपूर जीवन जी सकें, जैसे आज डायबिटीज या दिल की बीमारी के साथ लोग जीते हैं। ये एक बहुत उम्मीद भरी सोच है। तो इस पूरी चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर आईं उन्हें एक बार दोहरा लेते हैं।
हाँ बिल्कुल।
पहली बात तो मुझे ये लगी कि कैंसर हमारा अपना ही बिगड़ा हुआ रूप है, ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं, हमारी अपनी ही कोशिकाएं हैं जो रास्ते से भटक गई हैं।
हाँ, ये नजरिया बहुत जरूरी है। ये लड़ाई को बाहरी हमले से हटाकर अंदरूनी गड़बड़ी को ठीक करने पर ले आता है।
दूसरी बात, कैंसर की अनेकता, ये कोई एक बीमारी नहीं है, 200 से ज्यादा अलग अलग तरह की बीमारियां हैं।
सही कहा, हर एक का कारण अलग, जेनेटिक प्रोफाइल अलग, इलाज का तरीका अलग। इस विविधता को समझना ही असरदार इलाज की कुंजी है। कोई एक कैंसर का इलाज नहीं होता।
तीसरी बात, इलाज का सफर, कैसे हम पुराने काटो जलाओ जहर दो वाले तरीकों से,
सर्जरी, रेडियो, कीमो,
हाँ उनसे आगे बढ़कर आज के ज्यादा सटीक मॉलिक्यूलर लेवल के इलाजों तक पहुंचे हैं। ये दिखाता है कि जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ी है इलाज बेहतर हुए हैं। बिल्कुल, ये वैज्ञानिक समझ की जीत है। चौथी बात, कैंसर जमा हुई गलतियों की बीमारी है।
हाँ, ये रातों रात नहीं होता।
नहीं, सालों तक DNA में धीरे धीरे गड़बड़ियां जमा होती हैं, तब जाकर बनता है। यही बताता है कि उम्र क्यों सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है और बचाव यानी रोकथाम क्यों इतना जरूरी है।
और पांचवी बात,
रोकथाम और जल्दी पता लगाने की ताकत।
हाँ, ये सबसे जरूरी है शायद।
कितने भी अच्छे इलाज क्यों ना आ जाएं, कैंसर से लड़ने के सबसे शक्तिशाली हथियार आज भी बचाव और जल्दी पहचान ही हैं।
तंबाकू छोड़ना, सेहतमंद जीवन शैली और सही समय पर स्क्रीनिंग करवाना,
ये बहुत जाने बचा सकता है, खासकर हमारे देश जैसे कॉन्टेक्स्ट में जहां इलाज महंगा और मुश्किल हो सकता है, इन पर ध्यान देना और भी जरूरी हो जाता है।
और आखिरी बात,
विज्ञान ही उम्मीद है। ये पूरी कहानी लगातार वैज्ञानिक तरक्की की है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ा है नतीजे बेहतर हुए हैं। ये अज्ञानता और डर से निकलकर ज्ञान और असरदार एक्शन तक का सफर है जो भविष्य के लिए सच्ची ठोस उम्मीद जगाता है।
प्रोफेसर जेम्स के काम में कुछ ऐसी बातें हैं जो वाकई सोचने का नजरिया बदल देती हैं। पहली जो मुझे याद आ रही है, कैंसर कोई बाहरी हमलावर नहीं बल्कि एक गृह युद्ध है।
हाँ, हमारी अपनी कोशिकाएं हथियारबंद होकर अपने ही समाज के नियम तोड़ रही हैं। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि लड़ाई कितनी अंदरूनी और पेचीदा है।
और दूसरी वो सोच कि अब सवाल बदल गया है।
हाँ, हम अब ये नहीं पूछते कि कैंसर किस अंग का है, बल्कि ये पूछते हैं कि कौन सी जेनेटिक गड़बड़ी से चला रही है।
यही आज के व्यक्तिगत इलाज का आधार है। है ना?
बिल्कुल, ट्यूमर कहाँ है इससे ज्यादा जरूरी ये हो गया है कि उसके अंदर कौन सी खराबी है। हो सकता है फेफड़े के कैंसर का इलाज स्किन कैंसर जैसा हो, अगर दोनों में एक ही जेनेटिक गड़बड़ी हो।
और इम्यूनोथेरेपी के बारे में वो नजरिया भी बहुत दिलचस्प है।
हाँ, कि इम्यूनोथेरेपी का मकसद कैंसर को जहर देना नहीं, बल्कि उस नकाब को हटाना है जिससे वो इम्यून सिस्टम से छिपता है।
हम कोई नया हथियार नहीं ला रहे, हम उसी सबसे ताकतवर हथियार को जगा रहे हैं जो पहले से मौजूद है, मरीज का अपना शरीर।
ये इलाज का बिल्कुल अलग फलसफा है, बाहरी हमले के बजाय अंदरूनी रक्षा को मजबूत करना।
और आखिर में इलाज के लक्ष्य में जो बदलाव आया है?
हाँ, कि कई मरीजों के लिए अब लक्ष्य सिर्फ किसी भी कीमत पर ठीक होना नहीं, बल्कि कैंसर को एक ऐसे काबू में आने वाली पुरानी बीमारी बनाना है जिसके साथ इंसान एक लंबा और भरपूर जीवन जी सके।
ये उम्मीद भी देता है और यथार्थवादी भी है, ये मानना कि जीत के कई मतलब हो सकते हैं।
हाँ, जीवन की गुणवत्ता भी उतनी ही जरूरी है जितनी जीवन की लंबाई।
तो ये सारी जानकारी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आ सकती है? सबसे सीधा तरीका तो शायद यही है कि हम अपनी सेहत का ध्यान रखें।
बिल्कुल, अपनी सेहत की बागडोर संभालना। जब हमें पता है कि कैंसर के क्या कारण हो सकते हैं, तो हम अपनी जीवन शैली बदलकर खतरा कम कर सकते हैं। तंबाकू शराब से दूरी, वजन कंट्रोल, सेहतमंद खाना, धूप से बचाओ।
ये सिर्फ सलाह नहीं, इसके पीछे ठोस विज्ञान है।
सही कहा। दूसरा, स्क्रीनिंग में समझदारी से भाग लेना। ये समझना कि मैमोग्राम, पैप्समेयर या कोलोनोस्कोपी क्यों जरूरी है, हमें इन्हें करवाने के लिए प्रेरित कर सकता है।
हाँ, टालना नहीं चाहिए, जल्दी पता चलने पर इलाज आसान और ज्यादा कामयाब होता है।
बिल्कुल, और मरीजों और उनके परिवारों के लिए ये जानकारी बीमारी को बेहतर समझने में मदद करती है।
कैसे?
बायोप्सी का मतलब क्या है, स्टेजिंग क्यों होती है, अलग अलग इलाज कैसे काम करते हैं, ये सब समझने से मरीज अपनी देखभाल में ज्यादा सक्रिय भागीदार बन सकता है। वो डॉक्टरों से बेहतर सवाल पूछ सकता है, अपने इलाज के विकल्पों को समझ सकता है।
हाँ, ये सशक्तिकरण देता है।
और ये ज्ञान हमें सही उम्मीद और हौसला भी देता है, ये समझने से कि विज्ञान कितनी तरक्की कर रहा है, बेवजह के डर और निराशा से लड़ने में मदद मिलती है। आज कैंसर का पता चलना वैसा नहीं है जैसा 20 साल पहले था। इलाज बेहतर हो रहे हैं, बचने की दर बढ़ रही है।
और एक बहुत जरूरी बात, गलत जानकारी से बचना।
हाँ, ये बहुत जरूरी है। इंटरनेट पर चमत्कारी इलाजों के दावों की भरमार है। ये समझना कि कैंसर जेनेटिक गड़बड़ियों की बीमारी है, हमें ऐसे दावों पर शक करने और वैज्ञानिक आधार वाले इलाज पर भरोसा करने में मदद करता है।
तो इस सारी बातचीत का सबसे अहम सबक क्या रहा आपके लिए?
मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम वाकई अभूतपूर्व तरक्की के दौर में हैं। पुराने जहरीले इलाजों से हटकर व्यक्तिगत सटीक इलाजों की तरफ बढ़ना मेडिकल इतिहास की बड़ी कामयाबियों में से है। और ये एहसास कि हमारा अपना इम्यून सिस्टम ही कैंसर से लड़ने वाला सबसे ताकतवर योद्धा है, ये भविष्य को बदल देगा। लेकिन ये भी याद रखना होगा कि बचाव और जल्दी पहचान हमेशा हमारे सबसे मजबूत हथियार रहेंगे, खासकर बड़े पैमाने पर देखें तो।
और मेरे लिए सबसे अहम सबक ये है कि कैंसर एक बायोलॉजिकल पहेली है जिसे सुलझाया जा सकता है। ये कोई रहस्यमयी शाप नहीं है, इसके पीछे पहचाने जाने वाले कारण और प्रक्रियाएं हैं, और हम हर साल इन्हें बेहतर समझ रहे हैं और इनसे निपटने के ज्यादा समझदार तरीके खोज रहे हैं। ज्ञान वाकई डर को कम करता है।
सही कहा।
और इस चर्चा ने निश्चित रूप से मेरा नजरिया बदला है। कैंसर को एक डरावनी चीज मानने के बजाय इसे अलग अलग तरह की बीमारियों के एक स्पेक्ट्रम की तरह देखना, जिनमें हर एक के लिए अलग तरीका चाहिए, इससे डर की जगह एक ज्यादा विश्लेषणात्मक और उम्मीद भरी सोच आती है।
हाँ, और ये समझने में मदद मिलती है कि कुछ कैंसर क्यों ज्यादा ठीक हो पाते हैं और रिसर्च क्यों इतनी जरूरी है।
बिल्कुल। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।